माधव खिड़की से घर में घुस गया था। कुछ आगे बढ़ा तो उसे आशुतोष जी नजर आए। सीढ़ियों के पास बेहोश पड़े थे वे और सर से खून बह रहा था। माधव हड़बड़ाते हुए उनकी ओर दौड़ा, उन्हें आवाज देकर उठाने की कोशिश की। जब उनके शरीर में कोई हलचल महसूस नहीं की तो उसने उनकी नब्ज चेक की, फिर गहरी सांस ली। आसपास नजर दौड़ाई तो सोफे पर स्टॉल पड़ा नजर आया। माधव ने उसे उठाकर आशुतोष जी के सर पर बांधा, उन्हें उठाकर बाहर लाया, रिक्शा रोका और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। राधिका बदहवास सी बौड़ती हुई एक वार्ड के बाहर पहुंची, आंसुओं से भीगे अपने चेहरे को अपनी हथेलियों से पहुंचा और दरवाजे खोलते हुए अंदर दाखिल हो गई। अंदर आशुतोष जी हॉस्पिटल बेड पर लेटे थे, उनके हाथ में ड्रिप लगी थी, होश आ गया था उन्हें और माधव उनके पास ही बैठा था। आशुतोष जी के सर पर बंधी पट्टी देखते ही राधिका की आंखें एक बार फिर नम हो गईं। हम अब ठीक हैं बेटा, उसकी भीगी आंखें देखकर आशुतोष जी ने मुस्कुराकर उसे अपने ठीक होने का एहसास दिलाया और राधिका दौड़कर आकर उनके सीने से लिपट गई। किसी छोटी बच्ची जैसे वे उनके सीने से लगी, फूट फूट कर रो पड़ी। माधव ने पहली बार उसे यूं कमजोर पड़ते और रोते देखा था। उसका दिल अजीब सा हो गया जबकि आशुतोष जी की आंखें नम हो गईं। अपनी माँ को खोने के बाद आज जाकर राधिका ऐसे रोई थी, वरना जिंदगी की हर मुश्किल का सामना उसने बड़ी ही हिम्मत से किया था, पर शायद अपने पापा को खोने का ख्याल उसे तोड़ गया था। हम ठीक हैं बेटा, आज बेवजह ही इतना परेशान हो रही है, चलिए अब चुप हो जाइए, रोना बंद कीजिए, हमारी बेटी तो बहुत बहादुर है और इतनी सी बात पर कैसे बच्चों जैसे रो रही है। आशुतोष जी उसका मन बहलाने की कोशिश कर रहे थे। राधिका ने खुद को संभाला और उनसे जरा दूर हट गई। राधिका, पानी। माधव की आवाज सुनकर राधिका की आंसुओं से भीगी सुर्ख आंखें उसकी ओर उठ गईं। अगले ही पल उसने अपनी पलकों को झुकाते हुए पानी का ग्लास थाम लिया। आंसू थमे, खुद भी कुछ संभली तो आशुतोष जी के पास ही बैठ गई और उनकी हथेली थामते हुए बोली, कितना डरा दिया था आपने मुझे, जानते हैं ना आप ही मेरी हिम्मत है, आपको कुछ होता है तो कितना घबरा जाती हूं मैं, फिर भी अपना ख्याल नहीं रखते। नम आंखों से उन्हें देखते हुए राधिका उनसे शिकायत कर रही थी, नाराजगी जाहिर कर रही थी। आशुतोष जी बस खामोशी से उसे देखते रहे। पल भर ठहरते हुए राधिका ने ही सवाल किया, पापा आपको इतनी गहरी चोट लगी कैसे? बेटा, सीढ़ी उतर रहे थे हम, तभी चक्कर आ गया और हम संभल नहीं सके, सर दीवार से टकराया और फिर हमें कुछ होश नहीं रहा। पापा, आप ऊपर करने क्या गए थे? कितनी बार मैंने कहा है कि मत जाया कीजिए ऊपर, पर आप मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। नाराज राधिका ने कस के डांट लगाई थी उन्हें। कुछ देर पहले तक जिसमें उन्हें अपनी छोटी सी बेटी नजर आ रही थी, अब उसमें अपनी माँ की झलक देख रहे थे वे। नीचे घबराहट हो रही थी हमें, तो सोचा थोड़ा खुली हवा में टहल लें। राधिका कुछ पल नाराजगी से उन्हें घूरती रही, फिर वहां से उठते हुए बोली, आप आराम कीजिए, मैं जरा डॉक्टर से बात करके आती हूँ। जाते जाते उसने एक नजर माधव को देखा तो उसका इशारा समझते हुए वे भी उसके पीछे ही निकल गया। मैं किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। अगर आज आप वक्त पर पापा को हॉस्पिटल नहीं लाते, मेरे कहने पर घर नहीं जाते, मेरी इतनी हेल्प नहीं करती तो शायद मैं अपने पापा को भी खो देती। बोलते हुए राधिका का गला भर आया और आंखें नम हो गईं। अभी तो डॉक्टर से बात करके आई थी, जिन्होंने साफ कहा था कि अगर पेशेंट को लाने में थोड़ी देर और होती तो खून ज़्यादा बह जाने से उनकी मौत भी हो सकती थी, और अपने पापा को खोने के ख्याल से ही उसका मन कांप उठा था। कैसी बातें कर रही हैं आप राधिका, कुछ नहीं होगा अंकल को, बिल्कुल ठीक हैं वे, और मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, दोस्त हैं ना हम, और दोस्त तो एक दूसरे की मुसीबत में काम आते हैं, यही तो उनका फ़र्ज़ होता है। फिर भी आज आपने बहुत किया है मेरे लिए, इसके लिए मैं आपको जितनी बार थैंक यू कहूँ उतना कम होगा। तो ठीक है, थैंक यू के बदले आप मुझे अपने घर आने की इजाज़त दे दीजिए, ताकि मैं अंकल का हालचाल लेता रहूं, हिसाब बराबर हो जाएगा। माधव ने मुस्कुराते हुए बात की दिशा मोड़ी, शायद राधिका का मूड ठीक करना चाहता था, पर उसकी बात सुनकर राधिका के चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए थे। पापा को पता है कि आप कौन हैं, तो क्या हुआ, क्या वे भी आपके तरह मेरे लिए अपने मन में बैर पाले बैठे हैं, नाराज़ है मुझसे कि मैंने उनकी इतनी समझदार बेटी को ठुकरा दिया? माधव ने आंखें चढ़ाते हुए हल्के फुल्के अंदाज में ये बात कही थी। राधिका ने हड़बड़ाते हुए इनकार में सर हिला दिया, नहीं, पर आपका उनके सामने जाना शायद ठीक नहीं होगा। माधव ने गहरी निगाहों से उसे देखा और गंभीर भाव उसके चेहरे पर उभर आए। ठीक तो शायद वे नहीं था जो सालों पहले हुआ। खैर, अगर आप नहीं चाहती तो नहीं आऊँगा मैं आपके घर, आप परेशान मत होइए। राधिका जो नजरें झुकाए खड़ी थी, वे निगाहें उठाकर उसे देखने लगी। जब तक मैं नहीं आई आपने यहाँ रुककर पापा का ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वजह से आप अपना काम छोड़कर यहाँ परेशान हो रहे हैं, पर अब मैं आ गई हूँ, आगे सब मैं संभाल लूंगी, अब आप वापस जा सकते हैं। क्या जब तक अंकल को डिस्चार्ज नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ नहीं रुक सकता? मैं पापा के पास रुक जाऊंगी, वहाँ आपके रेस्टोरेंट में आपकी ज़रूरत होगी तो आप चले जाइए। रेस्टोरेंट की चिंता आप मत कीजिए, आप बस इतना बताइए कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ या नहीं। माधव की गंभीर निगाहें राधिका के चेहरे पर ठहरी थीं और वे कुछ विचलित सी लग रही थीं। आप क्यों यहाँ रुककर बेवजह परेशान होंगे? आपके कपड़े भी गंदे हो गए हैं। आप चले जाइए ना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। राधिका का ये जवाब सुनकर माधव कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर नाराजगी भरे स्वर में बोला, आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुकूं तो साफ साफ कह दीजिए ना, इतने बहाने क्यों बना रही हैं? चला जाता हूँ मैं यहाँ से, आप अंकल का और अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक अपने इस दोस्त को याद कर लीजिएगा, अगर दोस्त मानती हो तो। और घर से निकलने से पहले ध्यान से सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिया कीजिए, सेफ नहीं है ये। माधव ने अपनी बात कही, खफा खफा नजरों से उसे देखा और जाने को मुड़ गया। राधिका का मन उसकी नाराजगी से बेचैन हो गया। पहले से तो वे नाराज था उससे, अब और गुस्सा हो गया था। जाने किन एहसासों तहत आज राधिका ने माधव की ओर कदम बढ़ाए और खुद से दूर जाते माधव की कलाई थाम ली। माधव के आगे बढ़ते कदम ठहर गए। सपाट चेहरे के साथ वे राधिका की ओर पलट गया। अब क्यों रोका है आपने मुझे? मत जाइए आप, राधिका ने झिझकते हुए कहा और कातर निगाहों से उसे देखा तो माधव बौहें से कोड़े उसे ही देख रहा था। क्यों क्यों नहीं जाऊं? अभी तो खुद आप मुझे भेजने के पीछे पड़ी हैं। मैं बस अपनी वजह से आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी, पर आप तो नाराज ही हो गए। राधिका की मायूसी भरी निगाहें माधव की ओर उठ गईं। माधव के चेहरे के भाव कुछ संजीदा हो गए और वे एकटक राधिका की उन बड़ी बड़ी कचरारी आंखों में झांकने लगा। आपको पता है राधिका, मुझे सबसे ज्यादा परेशानी कब होती है? राधिका के चेहरे पर सवालिया भाव उभर आए और निगाहें उसकी निगाहों में उस सवाल का जवाब तलाशने लगी। तब जब आप अपनी परेशानी और दुख मुझसे छुपाकर मुझे पराए होने का आभास करवाती हैं, तब जब मुझे अपनी जिंदगी से दूर करके ये एहसास दिलाती हैं कि मैं कुछ नहीं लगता आपका, तब जब मैं आपके लिए कुछ भी करता हूँ और आप मुझे थैंक यू कहकर उसे एहसान बनाकर ये जताती हैं कि मेरा कोई हक नहीं आप पर, तब जब अपने दिल की बात मुझे बताने से कतराती हैं और मुझे नज़रअंदाज करके ये दिखाती हैं कि आपकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। बहुत तकलीफ होती है मुझे जब आपकी इन खूबसूरत आंखों में आंसू देखता हूँ और एहसास होता है कि मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि इन आंखों से आंसुओं को चुराकर आपके लबों पर मुस्कान सजा सकूं।
दिल के जज्बात आंखों से बयां हो रहे थे। दोनों की धड़कनें एक लय में धड़क रही थीं और निगाहें एक दूसरे की निगाहों से उलझी थीं। जाने कैसा एहसास था ये जिसने राधिका की सांसों को बेचैन कर दिया था, और जाने कैसे जज्बात देखे थे उसने माधव की आंखों में कि उसकी पलकें उसके रुखसारों कर बिछर गई थीं। राधिका, क्या आप मुझे खुद पर इतना अधिकार नहीं दे सकती कि मैं आपकी आंखों से इन आंसुओं को चुराकर होंठों पर मुस्कान सजा सकूं? माधव ने बारी बारी उसकी भीगी पलकों की नमी को चुरा लिया था। उसका स्पर्श पाकर राधिका की जिस्म में सिरहन सी दौड़ गई। उसके अनकहे एहसासों की गर्मी में उसका वजूद पिघलने लगा और वे सकुचाई हुई से खुद में ही सिमट गईं। माधव के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। राधिका की ये खामोशी, लरसती पलकें, आपस में टकराते भींचे हुए लब, दिल की बढ़ी धड़कनें, बहकती सांसें और खुद में सिमटता उसका कोमल वजूद बहुत कुछ ऐसा जाहिर कर गया था जो आज भी अनकहा सा था। दोस्त हूँ आपका, इतना हक तो है ना मेरा आप पर? राधिका की कानों में माधव की ठहरी हुई सर्द आवाज पड़ी तो उसने पलकें उठाकर उसे देखा और उसे नज़दीकियों का एहसास होते ही हड़बड़ाते हुए उससे दूर हट, मैं पापा को देखने जाती हूँ। राधिका ने अपनी बेचैनी सांसों को संभालते हुए धड़कते दिल के साथ बिखरते स्वर में कहा और हड़बड़ाते हुए वार्ड की ओर भाग गई। माधव कुछ पल उसे खुद से दूर जाते खामोशी से देखता रहा, फिर कुछ सोचते हुए उसके लबों पर दिलकश मुस्कान उभर आई और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए वे भी उसके पीछे चल दिया। उसके कदम वार्ड के बाहर ही ठहर गए। दरवाजे के बीच में लगे उस छोटे से कांच से जब उसने राधिका को अपने बाबा के पास सर रखे बैठे और उन्हें उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते देखा तो वे बाहर ही रुक गया कि बाप बेटी के इस प्यारे से पल को खराब नहीं करना चाहता था। और अभी अभी उसके और राधिका के बीच जो हुआ, शायद उसके वजह से राधिका कुछ असहज हो जाए या उससे कतराने लगे। माधव वहीं खड़ा दोनों को देख रहा था। कुछ चल रहा था उसके मन में और दिल अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था जिसे होंठों पर सजी मुस्कान जाहिर कर रही थी। कुछ देर बाद जब उसने वार्ड में कदम रखा तो जैसा कि उसे अंदाजा ही था, राधिका चिहुकते हुए सीधी होकर बैठ गई थी और उसने नजरें चुराने लगी थीं। उसकी झुकी पलकें और चेहरे की बदलती रंगत देखकर माधव मुस्कुरा दिया। आशुतोष जी ने बड़े ही ध्यान से दोनों को देखा और कुछ सोचते हुए उनके चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए। रात को आशुतोष जी को डिस्चार्ज मिला, तब तक माधव भी वहीं रुका था और दोनों को सही सलामत घर तक भी छोड़कर आया था। जाते जाते राधिका को सभी खिड़की दरवाजे ठीक से बंद करने की हिदायत भी दे दी थी। राधिका तो सारे वक्त नजरें झुकाए खामोश रही थी और माधव मुस्कुराता रहा था। टू बी कंटिन्यूड।